श्रीमद् भागवत का निर्माण हमको हरिनाम संकीर्तन करने के लिए ही किया गया है, ऐसे वो कहते हैं। बहुत सुंदरता से उन्होंने वो पॉइंट ड्राइव किया कि कैसे हमको लगता है कि श्रीमद् भागवतम कृष्ण का गौरव करने के लिए किया गया है, एक्चुअली वो सही बात है, लेकिन एक्चुअली उसका सार जो है वो कृष्ण का कीर्तन करने के लिए, हमको प्रवृत्त करने के लिए भागवत बताया गया है। वो है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे उनका वीडियो है। तो जब हम खुद के बारे में सोचते हैं तो फिर कीर्तन करने में हम हिचकिचाते हैं। ये तो मैं ही गाता हूँ हमेशा, आपको गाने को देता हूँ क्या? आई डोंट गिव चांस टू यू टू सिंग एनीवेज। वो तो हाँ, तो नहीं गाना चला उसकी बात में। क्योंकि गाने में नाभि और हमारा स्पाइन, नाभि कहाँ पर है और स्पाइन किधर है, बीच में हमारी इंटेस्टाइन और स्टमक है। तो जब गाते हैं तो नाभि का और स्पाइन का संबंध होता है तो हम लोग अच्छी तरह से गा सकते हैं, लेकिन जब उसके बीच में अन्न आता है तो गाने में कष्ट होता है। ये उसका फंडा है। तो गायक लोग भी भोजन के बाद नहीं गाते हैं, बात सही है, लेकिन जनरली कह रहा हूँ मैं आपको, कभी भी कीर्तन का कभी भी मौका है तो कभी ऐसा हिचकिचाना नहीं, कभी भी ईगर टू सिंग। वो हमारे मदन मोहन जी थे ना, मदन मोहन जी, वो जब गाते थे ना तो उनको किसी ऑडियंस की ज़रूरत नहीं होती थी, कौन है कौन नहीं है, कौन से इंस्ट्रूमेंट है कौन से नहीं है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, उनको बस मैं हूँ और कृष्णा है ना, बस गाने के लिए काफ़ी है और कोई चाहिए नहीं बीच में। और वो एकदम एक बार रात को शयन दर्शन में गोपीनाथ मंदिर में गा रहे थे, इतना मग्न होकर उन्होंने गाया ना, और जब शयन दर्शन बंद हो गया तो मुझे बोले कि आपने देखा गोपीनाथ जी की मुरली हिल रही थी, देखा आपने? तो मैंने सोचा कि आप ही देख सकते हो, ये तो आप ही देख सकते हो, हम क्या देख सकते हैं उसको। ऐसा है वो वन टू वन, नहीं दर्शन के समय, वो तब तो गा रहे थे ना वो, लेकिन दर्शन जब बंद हुआ तो बोलने का समय आया, तो फिर वो बोले कि आपने देखा क्या गोपीनाथ जी की मुरली हिल रही थी। तो हम लोग नहीं देख पाते उसको सब कुछ, आप ही देख पाओगे, जिनको दृष्टि है वो देख सकते हैं, क्योंकि वो और कृष्णा उनके बीच में कोई है नहीं दूसरे, उनके लिए गाते हैं वो, सब देखते हैं उनका क्या क्या भाव है। बहुत अच्छा लगा मुझे उस दिन कि हम लोग जब गाते हैं तो सोचते हैं बहुत सारा कि कौन क्या कहेगा, मेरा सुर अच्छा है कि नहीं अच्छा, ट्यून अच्छी है कि नहीं अच्छी है, कितने लोग आनंद ले रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं, ऐसा सब हर चीज़ हमको अफेक्ट करती है, लेकिन जो भगवान के लिए गाता है वो कुछ अफेक्ट नहीं करता है। वो 1000 लोगों का समुदाय हो, 2 लोगों का हो, अकेले हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमारे जैसे लोग अकेले गा नहीं सकते, को ऑडियंस चाहिए, को इंस्ट्रूमेंट चाहिए। मैं घर में अकेला हूँ तो कभी गाता नहीं मेरे घर के ठाकुर जी के लिए, देखता हूँ कोई भक्त लोग आए फिर मैं हारमोनियम जमाता हूँ फिर गाता हूँ। बहुत ऊंची स्टेज है वो। रमेश बाबा जी कहते थे कि जब मैं अकेले चित्रकूट के जंगल में पुकारता था तो उसमें कुछ अलग आनंद था, अभी वो चला गया आनंद, जब मैं लोगों के बीच में आया तो फिर आनंद चला गया, कि जब मैं बरसाना के जंगलों में और उसके पहले चित्रकूट के जंगलों में जब अकेले पुकारता था तो उसमें अलग अनुभव आया करता था, तो बीच में कोई नहीं ना उसके अंदर। और जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे ना तो पेड़ ना पेड़ उनके पत्ते और फूल झड़ जाते थे, सब पेड़ ऐसे थर्राते थे फिर उनके पत्ते और फूल ऐसे गिर जाते थे, और फिर कुछ पेड़ ऐसे झुक के भगवान को प्रणाम करते थे फिर खड़े हो जाते। हिरण और गाय और सब प्राणी आकर उनको अपनी जीभ से चाटते थे और ऐसे गोल करके सराउंड करके ऐसे पकड़ते थे उनको, फिर सब तोता और मोर और सब कोयल ऐसे पंछी आके इनके गोल 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 घूमते थे और उनके लिए गाते थे अलग अलग ध्वनि में। और फिर गायें उनको छोड़ती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से ग्वाला गायों को अलग करके उनको आगे जाने देता था। ऐसे मथुरा में अनुभव है, भावलावन में अनुभव है, जहाँ जहाँ वो गए ऐसे अद्भुत अनुभव हुआ करते। भूमि भी ऐसे थर्राती थी और ऐसे कंपायमान होती थी और भूमि नरम ऐसे मुलायम होकर उनके चरण चिन्ह अपने में समा लेती थी। ऐसे कंपित मतलब वो ना कंपन होता था भूमि का। भूमि देवी सबसे पहले भूमि देवी खुश हुई थी जब उन्होंने सुना कि कृष्ण आ रहे हैं अवतार लेकर, कभी मुझ पर अपने चरण रखेंगे। महाप्रभु चैतन्य जब आए थे तो उन्होंने हर जगह थर्रा कर उनका स्वागत किया भूमि देवी ने। तो कहते हैं प्रेम कीर्तन। सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रताप रुद्र जब खड़े थे अपने महल पे छत पे और चैतन्य महाप्रभु के जो बंगाली वैष्णव हैं वो सब आ रहे थे पुरी से, नहीं बंगाल से पुरी। जब महाप्रभु जी आए तो उनके पीछे सब बंगाली वैष्णव आए। जब सबसे पहली बार महाप्रभु जी ने शिखर देखा अठार नाला के ऊपर, फिर बेहोश हो गए वो सब। बाद में जब भी सारे वैष्णव को शिवानंद सेन और सब लोग परमानंद आचार्य सब लोग आते थे वन बाय वन आ रहे थे तो वो लोग कीर्तन कर रहे थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य तब तक तो भक्त बन चुके थे और प्रताप रुद्र को अभी भी महाप्रभु को मिलने का मौका नहीं मिला था। तो ऐसे अवस्था में थे वो और वो ऊपर से खड़े होकर देख रहे थे कि कितना सुंदर गा रही है। मैं तो पुरी का ही हूँ, मैं तो जन्म ही मेरा यहाँ का है और मैंने बचपन से कितने लोगों का कीर्तन सुना है, कितने प्रकार के लोगों का सुना है, तो ये कुछ अलग है, क्या है इसका रहस्य क्या है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि ये प्रेम कीर्तन है। वो कहते हैं कि ये जब गाते हैं तो इनके मन में कोई कामना नहीं है, ना मोक्ष की कामना है, ना कुछ कर्मफल की कामना है, यहाँ तक कि मेरी तकलीफ ख़त्म हो जाए ये भी कामना नहीं है। सफरिंग्स मेरा दुख दर्द जो है वो भी मिट जाए ये भी कामना नहीं है उनकी। वो केवल कृष्ण के लिए केवल प्रेम से गा रहे हैं, बस कृष्ण के लिए और प्रेम से, बस यही उनका गाने का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। खुद का दुख निवारण, कर्मफल मुक्ति, खुद को भगवत प्रेम प्राप्ति, इसमें से कोई भी उनका एम नहीं है। केवल समसिद्धिर हरितोषणम यही एक उनका गुण है, इसलिए ये कीर्तन टॉप मोस्ट कीर्तन है। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रताप रुद्र को बताया। इसलिए हमको भी जब हम कीर्तन करते ना तो सब कुछ भूल कर केवल कृष्ण के लिए उनके आनंद के लिए गाना चाहिए, चाहे हमारे आवाज़ सुर ताल अच्छा हो ना हो, सुनने वाले हो ना हो, केवल उनके लिए गाना चाहिए, उससे भी हमारे जीवन की सफलता है। और इंद्र प्रभु कह रहे थे कि जब कभी भी हमें कीर्तन करने का मौका आता है तो तुरंत कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कीर्तन करने के लिए ही बनाई गई हैं। हाँ, जप करना हमारा, भगवत श्रवण करना, ड्यूटी वर्शिप और सेवा जो हम करते हैं, ग्रंथ अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, यात्रा जाते हैं, प्रसाद खाते हैं, चर्चा करते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो केवल हम अच्छी तरह से भगवान नाम का कीर्तन कर सकें इसलिए बनाई गई है। अपने आप में वो एक्टिविटी उसका गोल नहीं है, गोल ये है कि भागवत पढ़ने का, वो गोल नहीं है। भागवत पढ़ के करना क्या है, टीटी वर्शिप करके करना क्या है, उसका गोल क्या है। तो गोल है कि हमको भगवत नाम में रुचि हो और वो भगवान के लिए गाएं। जप करने का उद्देश्य भी यही है कि हम अच्छा कीर्तन कर सकें, क्योंकि जब से जब ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है और कीर्तन ये कलेक्टिव एक्टिविटी है, और जब से हम ये कामना करते हैं कि हम एकत्र होकर भगवान के नाम को पुकारें, क्योंकि यज्ञाय संकीर्तनाय प्राय रजंती ही सुमेधसा, युग धर्म तो है वो संकीर्तन है, संकीर्तन करने के लिए अनुकूल है, इसलिए हम जप करते हैं। इसलिए वो कई भक्त ऐसे होते हैं, मैंने उनको देखा है वृंदावन में भी, वैसे अकेले करतार लेके पूरा परिक्रमा में अकेले गाते रहते हैं, फुल नोबडी इज देयर विद देम। कितने ऐसे आचार्य हैं उधर झोपड़ी में रहते हैं वृंदावन में, जमुना किनारे झोपड़ी में बैठ के अकेले ही भजन करते रहते हैं, कोई नहीं उनके साथ, कोई आया बैठा तो ठीक है, नहीं गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाते रहते। तो मैं वृंदावन में था तो 3 बजे हम लोग कैसे उठते थे, 3 बजे हमारा नेबर जो था वो शाम राधे शाम राधे शाम 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 राधे शाम शाम राधे शाम शाम राधे शाम राधे शाम 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 ऐसे घंटों घंटों गाता था खाली हारमोनियम पे एवरी डे विदाउट फेल। और उसके आवाज सुन के हम 3 बजे उठते थे और हमारा मंगल आरती होने के बाद फिर भी उसका वो चलते रहता था, यही गाता था शाम राधे शाम राधे शाम 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 टी 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 टी, उसका एक पुराना हारमोनियम था फीमेल हारमोनियम, उस पर गाता था। और रमेश बाबा भी ऐसे ही अकेले झोपड़ी में बैठ के हारमोनियम लेके गाया करते थे मान मंदिर में। यस